اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے تجزیہ میں پاکستان کی سیاسی سماجی صورتحال کے حوالے سے دو اہم موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو پچھلے دنوں جو پیکا ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہیں اور اس پہ صحافتی تنظیمیں اور صحافتی حلقے اور پاکستان کے اپوزیشن کے بھی سیاسی سماجی حلقے بے انتہا احتجاج بھی کر رہے ہیں، اس پہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسرا اہم ترین موضوع ہے دسمبر 2024 میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ اچانک جنوری 2025 کے آخر میں ایک دم معطل ہوا۔ اس حوالے سے بھی ہم اپنے تجزیہ نگار سے بات کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان لاہور سے معروف صحافی سیاسی تجزیہ نگار محترم تصور حسین شہزاد ہیں۔ السلام علیکم تصور صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ تصور صاحب، پہلا سوال وہی جو ہم اور آپ صحافیوں کی، یعنی لگ یہ رہا ہے کہ شہر اگے حیات کو کہیں اس نے جکڑا ہوا ہے۔ پیکا ایکٹ میں جو ترامیم ہوئیں اور اس کے بعد پاکستان کے تمام تر صحافتی تنظیمیں اور جتنے بھی پریس کلبز سراپا احتجاج ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی سراپا احتجاج ہے، حالانکہ یہ ایکٹ جو ہے کہ کوئی اس حکومت نے منظور نہیں کیا، یہ اس سے پہلے ایکٹ اس نے کچھ ترامیم کی ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ ایکٹ میں کیا ہے اور اس میں ترامیم کیا ہوئی ہیں اور ایسا کیا ہے کہ جس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے، تین پہلو یہ۔
جی، اس حوالے سے اگر بات کریں تو صحافیوں کو جو تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی حکومتی کوشش ہے، اور اس حوالے سے تو باقاعدہ اب صدر مملکت نے گزشتہ روز سائن کر دیے تھے اور یہ اب باقاعدہ قانون بن چکا ہے پاکستان میں، اور اب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے، دی پروینشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس، انہوں نے پہلے پچھلے دور حکومت میں بنایا گیا تھا، اب اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس میں ترمیم کرنے کے بعد اب اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک چیز جہاں پہ صحافی برادری سراپا احتجاج ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ پیپلز پارٹی، صدر مملکت نے فوری طور پر دستخط کر دیے، لیکن پیپلز پارٹی کی باقی قیادت جو ہے وہ اس میں صحافیوں کی ہم آواز دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ روز گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ پیکا ایکٹ میں جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور یہ زیادتی ہے، حکومت جو ہے وہ آزادی اظہار پر قدغن لگانا چاہ رہی ہے۔ اور ایک طرف پیپلز پارٹی اس ترمیمی ایکٹ کو کنڈم کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ صدر مملکت نے فوری اس پہ دستخط کر کے اس کو قانون بھی بنا دیا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا ایک دورہ معیار اس حوالے سے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ اس میں جو قوانین نئے اس میں شامل کیے گئے، اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے خلاف تنقید برداشت نہیں ہوگی، کسی سپریم کورٹ یا قومی اسمبلی یا ہائی کورٹ۔ اس وقت جو پاکستان میں پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 ہے، یہ باقاعدہ طور پر قانون بن چکا ہے، کیونکہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گزشتہ روز اس پر دستخط کر دیے تھے، اور ان کے دستخط کے بعد اب اس کو باقاعدہ ایک قانونی شکل حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو یہ کس انداز میں کام کرے گا۔ حکومت جو موقف اختیار کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا متاثرین کی دادرسی کے لیے اس میں ترمیم کی گئی ہے، جبکہ صحافی برادری کا موقف یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ کی آڑ میں یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی جا رہی ہے، اور اس میں صرف سوشل میڈیا متاثر نہیں ہوگا بلکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی اس سے متاثر ہوگا، اور کوئی بھی صحافی جب کوئی خبر نشر یا شائع کرتے ہیں تو اس میں یہ اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ وہ تو پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر صحافی اپنے سورسز کی بنیاد پر خبریں دیتے ہیں، اور اب جب اس एक्ट के बाद सहाफियों को वो प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ये खबर कहाँ से ली है, इसका सोर्स क्या है। तो यूं एक उन पर कदगन लगने जा रही है, जिसकी वजह से पूरी जो पाकिस्तान की सहाफी बरादरी है वो इस पर सरापा एहतजाज है। इस के हवाले से बकायदा जो मैंने अभी तक इसका जायजा लिया, तो इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका मरकजी दफ्तर जो है वो इस्लामाबाद में होगा, और तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में भी इनके दफातर बनाए जाएंगे। और इसमें हुकूमत बदस्तूर यही मौकफ इख्तियार कर रही है कि इसमें जो है वो सोशल मीडिया पर जो तजयीक की जाती है और इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इसमें जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके तहफ्फुज़ की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदलिया के, पार्लियामेंट के और सूबाई असम्बलियों के और इवन अरकान असम्बली के भी तहफ्फुज़ की बात है। तो इसमें कोई किसी पर तनकीद नहीं कर सकेगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप किसी पर तनकीद बरए इसलाह भी करेंगे तो अगर उसको बुरी लगी है तो वो आपके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगा और आप उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिसकी वजह से सहाफ़ी बरादरी बिलखसूस सरापा एहतजाज है। अगर इन्होंने इनको तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तो पहले ही हुकूमत के दायरा इख्तियार में है, वो जब चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान का नाम लेना या उसकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है, तो बाज़ाब्ता तौर पे रिटर्न में ये आर्डर नहीं दिया हुआ मीडिया को, लेकिन उन्हें कहा गया है कि आपने इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखानी, इमरान खान का नाम नहीं चलाना। तो मीडिया बानी पीटीआई चलाता है इमरान खान के नाम की बजाय। तो ये असर व रसूख वारंट पैमरा की शक्ल में हुकूमत है अपनी ग्रिप रखे हुए है मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया पर। अब सोशल मीडिया रह गया था, उसमें लोग अपनी भड़ास निकालते थे, तो अब हुकूमत ने उसको भी वो गर्दन दबोच ली है सोशल मीडिया की भी। इसमें तमाम जो एप्स हैं या मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनके हवाले से, आप फेसबुक या ट्विटर है या उस पर, उसको भी ये दायरा इख्तियार में ले आएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी, उनको भी रोका जा सकेगा, यहाँ तक के पोस्टें भी डिलीट करवाई जा सकेंगी। तो ये वो चीज़ है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई जा रही है इस पीका एक्ट के तहत। अब वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो इनको प्रोसिक्यूट भी करेगी और इन्वेस्टिगेट भी करेगी, अब ये उसकी जिम्मेदारी होगी। अब इस एजेंसी के बनने के बाद जो एफआईए का साइबर क्राइम यूनिट है वो सेल वो खत्म कर दिया जाएगा और उसके तमाम मुलाजमीन और उसमें जो जेरे समात केसेस हैं वो सारे इधर नेशनल जो जो क्राइम साइबर क्राइम एजेंसी बनेगी पीका एक्ट के तहत, उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यूं जैसे आम तौर पे सोशल मीडिया पर लोग अपना इजहार करते हैं, ये उनकी इजहार राय की आज़ादी आइन देता है और किसी भी एक्ट के तहत उसको आप सलब नहीं कर सकते। ये एक्ट बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये आइन के भी अगेंस्ट है, और उसमें जो आइन अपने शहरियों को आज़ादी देता है, अब एहतजाज का हक है, वो आइन देता है कि बिल्कुल अगर आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ बाइंसाफी हो रही है, तो आप कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी है। लेकिन पीका एक्ट के तहत आप उस अथॉरिटी या उस शख्सियत या उस इदारे के खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वो बुनियादी फैक्ट हैं जिनकी वजह से सहाफी बरादरी बिलखसूस इस पर सरापा एहतजाज है। लाहौर प्रेस क्लब वालों ने इस पर
जी
एहतजाज
आप
किया,
लाहौर
पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट
किया।
वालों की जानिब से हुआ, इसके अलावा फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी इस पर सरापा एहतजाज है, और अब तो बाकायदा जो है वो पार्लियामेंट के घेराव की बातें भी की जा रही हैं, उस हवाले से भी राबता मुहिम सहाफियों की
जी
जारी है। तो इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने जा रहे हैं। तो ये एक्ट मेरे ख्याल में ये उसके आईनी जो आपको फैसिलिटीज दी गई हैं, आईन आपको जो हक देता है उसके ये खिलाफ है। ये हुकूमतें हमेशा अपने मफादात के लिए इन्हें इस्तेमाल करती आई हैं, और जब पिछली हुकूमत थी उन्होंने इस एक्ट को बनाया था, वो अपने मफाद में इस्तेमाल करते रहे। अब चूंकि पीटीआई का बिलखसूस जो एक पूरी फोर्स है उनकी सोशल मीडिया पर, जो जिसको ये काउंटर नहीं कर पा रही हुकूमत, के बाहर बैठे हुए लोग ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो हो गए, पाकिस्तान में बैठे हुए इमरान खान के सपोर्टर, उनके पास सबसे बड़ा और मौसर हथियार सोशल मीडिया ही है, और ये सोशल मीडिया की वजह से आज तक पीटीआई जिंदा है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के जो कारकुन है वो एक दूसरे के साथ रबते में है। तो इसको जो मौजूदा हुकूमत है वो इस रबते और इस पावर को जायल करने के लिए ये तरामीम की गई है, और इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये क्योंकि ये आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में भी कल हमारे लाहौर के साफी हैं जाफिर बिन यार, उन्होंने इसको चैलेंज किया है और एहतजाज का सिलसिला इस्लामाबाद तक जा रहा है। तो ये इसमें सिविल सोसाइटी और तमाम जमातें जो है सियासी समाजी, वो भी सहाफियों की हम आवाज है और वो सब समझते हैं कि ये जो एक्ट है ये जाती मफादात के लिए है, हुकूमत अपने दिफा के लिए इसको ला रही है।
अच्छा तसव्वुर साहब, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में पूरा इस कानून का तारुफ भी बताया जो तरामीम हुई, आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मुमलकत ने साइन कर दिया और नून की हुकूमत है, जबकि ये कानून अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बना और अब जो नई
जी
ये तरामीम आई है ये मौजूदा दौर में, तो पाकिस्तान की जो सियासी कैडर है वो अपने अपने दौर में सहाफती आज़ादियों को कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं मन मर्जी के ट्रैक पे लाने की कोशिश करता है और वो उसमें अपने आप को हक बजानब समझते हुए, और इस जब वो अपोजिशन में होते हैं तो तब उनके लिए सहाफत और सहाफियों की आज़ादी एक बहुत बड़ा नारा और स्लोगन बन जाती है। इस वक्त भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। मैं सवाल लंबा हो गया, मैं जिस पहलू के हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, जैसे आप बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इसको सियासी स्टंट के तौर पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश में है, जबकि सहाफती तंजीमें और अदारे अपने हवाले से भरपूर किस्म की कंपेन और तहरीक शुरू कर चुके हैं, तो इस सारे को आप कैसे एनालिसिस करते हैं?
इसमें यह है कि एक चीज़ बड़ी अफसोसनाक मैं कह सकता हूँ उसको, कि हमारी सियासी जमातें जो है ना, उनका एक दोहरा मेयार है इस हवाले से, आज़ादी इजहार के हवाले से, कि वो जब हकूमत में होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है कि कोई हमारे खिलाफ बात ना करे, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि सारी कौम जो है वो उनकी हम आवाज होकर हकूमत की ऐसी तैसी फेर के रख दे। तो उस वक्त वो सहाफत को भी सपोर्ट करते हैं, उस वक्त वो तजियाकारों को भी सपोर्ट करते हैं, उस वक्त वो एनालिसिस जो हो रहे होते हैं उसको भी अपने हक में करने के लिए कोशां रहते हैं। तो यूं छोटी जमातों को भी साथ मिला लेते हैं और एक मुश्तरका एक मुहिम चला देते हैं, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ज़्यादा तवाना हो। तो ये एक दोहरा मेयार है बहरहाल हमारी सियासी जमातों में, तमाम सियासी जमातें इस हमाम में सब नंगे हैं। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि मौजूदा जो सियासी जमातें हैं जिनमें अपोजिशन जमातें, उनमें पीटीआई है, जमात इस्लामी है, जेयूआई भी थोड़ा थोड़ा साथ दे देती है कभी कभी। तो ये सब ये हैं कि ये जो एक्ट है इसमें ये तरमीम जो है ये ना हो, ये खत्म कर दिया, इसको कालेअदम करार दिया जाए, क्योंकि इसमें जाहिर है जब अपोजिशन में होते हैं तो बोल रहे होते हैं, तो यही बोलने पर तो हुकूमत कदगन लगाना चाह रही है। तो ये अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि हमें बोलने की आजादी कम अज कम होनी चाहिए अपोजिशन में रह के, तो वो इस आजादी पर जो कदगन लग रही है उसके खिलाफ सारे मुत्तहिद भी हैं। अब गुज़श्ता रोज जो लाहौर में मुजहरा हुआ पीयूजे की काल पर, उसमें मैं खुद शरीक था, तो आप हैरान होंगे तमाम सियासी जमातें जितनी थी मुस्लिम लीग नून के अलावा, तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम जमातों की वहां पर नुमाइंदगी थी। तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन को आजादी हो, वो जिस तरह मर्जी हुकूमत को लताड़े, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई तनकीद ना करे। उन्हें सवाल चुभते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या किसी मौके पर जब कोई हुक्मरान आते हैं तो उनसे जो साफी सवाल करते हैं, वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमसे पूछा ना जाए, बस हम जो कर रहे हैं वो सब मीठा मीठा हप हप, तो ये हो कि हमारी हर बात की तारीफ की जाए। तो यही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद ना हो, हुकूमत तनकीद का रास्ता बंद करना चाहती है।
जी। अच्छा तसव्वुर साहब, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात बताई, मैं एक और पहलू से कि अगर इस कानून के हवाले से हकूमत का ये मौकफ है, जैसे आपने बताया भी कि हम ऐसी फेक न्यूज़ जो आवाम के लिए या किसी भी शहरी के लिए तकलीफ परेशानी एहानत या उसकी जिसे कह सकते हैं परेशानी का बायस हो, हम उनका कलाकमा करना चाह रहे हैं, जबकि सहाफती तंजीमों और दीगर आज़ाद हलकों की राय है कि कानून का गलत इस्तेमाल और खसूसियत के साथ हमारे सामने पाकिस्तान में बनने वाले तौहीन के कवानीन ऐसे हैं कि जिनकी लपेट
जी
में
बिल्कुल,
फिर आम शहरी आ जाता है, तो क्या ऐसा ही इसी वजह से सहाफती तंजीमें इस पाबंदी पे ज्यादा एहतजाज कर रही हैं?
जी बिल्कुल, सहाफ़ियों का जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमेशा ऐसे कवानीन का गलत इस्तेमाल होता है। अब एक सहाफ़ी है, वो रूटीन में अपनी खबर फाइल करता है और वो अपने सोर्स की बुनियाद पर वो खबर देता है, जबकि ये पीका एक्ट के तहत उसको अपना सोर्स बताना पड़ेगा। अगर सहाफ़ी अपना सोर्स ही बता दे तो फिर उसकी सहाफ़त तो ख़त्म हो गई, फिर वो कैसे काम कर पाएगा, क्योंकि कोई बंदा उस पर एतमाद नहीं करेगा। उसको पता होगा कि मैंने अगर ये खबर इस सहाफ़ी के साथ शेयर कर दी तो मेरा भी उसमें नाम आ जाएगा और मैं तो बेनकाब हो जाऊंगा। तो यूं लोग खौफजदा होंगे और सोर्सेज जो है वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे, तो सहाफ़ियों के लिए मसला बन जाएगा। तो इस हवाले से कानून का जो गलत इस्तेमाल है, अब आप देखें कि ज़ियाउल हक़ ने कुछ कवानीन ऐसे बनाए थे जो मजहबी हवाले से थे, आज तक उनका मुस्बत इस्तेमाल नहीं हुआ, हमेशा
नहीं
गलत इस्तेमाल हुआ है कि किसी के साथ जाति दुश्मनी है, किसी ने गली में नहीं गुजरने दिया तो उस पर भी तौहीन रिसालत लगवा कर उसको जेल भिजवा दिया जाता है। तो ये गलत इस्तेमाल की बुनियाद पर ये सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है कि ये कानून गलत इस्तेमाल होगा। और उसमें हुकूमत ने अपने तौर पर तो कोशिश की है कि उसको इस अंदाज में बनाया जाए जैसे कि इसमें अथॉरिटी जो है, इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी और उसका जो सरबराह होगा 9 अरकान पर ये अथॉरिटी होगी। इसमें जो मुतलका फील्ड में जो तजर्बा रखने वाला, 15 साल तजर्बा रखने वाला इसका चेयरमैन होगा, उसमें सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी पैमरा और इसी तरह दीगर जो हैं चेयरमैन पीटीए, वो सारे इसमें मेंबर होंगे। और इसके अलावा इसमें एक 10 साल तजर्बा रखने वाला सहाफ़ी, एक वकील और एक आईटी एक्सपर्ट और एक निजी शोबे से आईटी एक्सपर्ट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिया जाएगा। तो ये एक उनका पैनल बनाया जाएगा, वो ये फैसला करेंगे। लेकिन जाहिर है जिस बंदे को आप ओहदा दे रहे हैं, जिस बंदे को आप मराद दे रहे हैं इसमें ला के, तो उसने तो आप ही की साइड लेनी है ना, वो शफाफियत तो नहीं रहेगी उसमें। तो
जी
सहाफी बरादरी का जो मसला है, सहाफी बरादरी का जो मौकफ है, सहाफी बरादरी की जो इस वक्त उनकी ख्वाहिश है कि वो इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा, और वो हमें वाजे नजर आ रहा है कि वाकई इसमें जो है वो सिर्फ हुकूमत के लिए तो फायदा है, बाकी अपोजिशन और दीगर जो प्राइवेट इदारे हैं, सहाफ़ी इदारे, उनके लिए ये मसाइल का बायस बनेगा।
जी हाँ बिल्कुल तसव्वुर साहब, एक जवाबदेह रियासत में आज़ाद सहाफ़त एक अहम सतून है, और इसी रियासत में जो सियासत हो रही है, हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा मौजू हुकूमत और अपोजिशन के मज़ाकरात। दिसंबर
जी
2024 में इसकी शुरुआत हुई, पीटीआई ने बहुत से मौक़िफ़ अपनाते हुए बहरहाल जब सूरत हाल देखी, और लेकिन अचानक अब जनवरी के आखिर में एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन मज़ाकरात में बैठने से इनकार कर दिया, या हकूमती हलके भी इसको फरार भी कह रहे हैं। तो आप इस सारे सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं?
मैं पहले दिन से इस हवाले से एक बड़ी वाजे राय रखता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उलझाया जा रहा है, क्योंकि जो पार्टी उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है वो खुद मुल्ज़िम है। तो उसमें कैसे है, अब पीटीआई वालों ने कल जो ऐलान किया है यहाँ लाहौर में, उन्होंने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे के लिए दरख्वास्त दी है डिप्टी कमिश्नर को, और उनका इस हवाले से मौकफ ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और हमारे फार्म 45 पर डाका मारकर फार्म 47 की पैदावार हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई, तो हम इस डाके के खिलाफ 8 फरवरी को एहतजाज कर रहे हैं जो हमारा आईनी हक है। तो ये उन्होंने दरख्वास्त दी है डिप्टी कमिश्नर को और 8 फरवरी को लाहौर में जलसे का ऐलान किया है। तो इस हवाले से बुनियादी तौर पर ये है कि पीटीआई ये कहती है कि ये डाकू हुकूमत है जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है और फिर मुजाकरात भी उन्हीं के साथ कर रहे हैं, तो ये बेनतीजा साबित होने थे। दूसरी बात ये है कि अगर पीटीआई ने मुजाकरात करने भी हैं तो ऐसी कुवतों से किए जाएं जो वाकई यहाँ पर पावर में है, जो असल इकतदार की मालिक है। वो आइन में तो लिखा हुआ है कि इकतदार आला की मालिक अल्लाह की जात होगी और हुक्मरान उसे बतौर अमानत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह की जात की जगह पे कुछ और बिठा दिया गया है और
जी
वही वही जो है ना वो कुल्ली इख्तियारात के मालिक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर मुजाकरात करने भी थे तो उनके साथ करते ताकि उससे कोई रास्ता निकल आता। ये जिनके साथ मुजाकरात किए गए हैं उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो पीटीआई के साथ कोई मुजाकरात करके कोई फैसला दे सके। सपोज अगर इन मुजाकरात में ये तय पा जाता कि हम इमरान खान को रिहा करते हैं और नून लीग उसकी यकीन दहानी करवा देती और वो कुव्वत ना चाहती तो ये कैसे मुमकिन था कि हुकूमत इमरान खान को रिहा कर सकती। तो ये मुमकिन नहीं है, बेख्तियार हुकूमत है इस मामले में। तो ये एक डांग टपाओ पॉलिसी थी। हुकूमत वालों ने भी कहा कि चलो कुछ दिन जो है पीटीआई वाले सुकून में हो जाएंगे, मुजाकरात मुजाकरात खेलते हैं और उसके बाद एंड पे नतीजा वही होना है जो अब निकला है कि वो तातुल का शिकार हो गए हैं। तो इस हवाले से नून लीग कम अज कम मेरे ख्याल में इतनी पावर में नहीं है कि वो पीटीआई के साथ मुजाकरात करके पीटीआई के मुतालबात मान सके। पीटीआई ने अगर अपने मामलात और मुतालबात मनवाने हैं तो उन्हें हुकूमत की बजाय जो हुकूमत चला रहे हैं उनके साथ मुजाकरात करने होंगे। ये सियासी सेटअप में ये होता है कि सियासी कुव्वतें आपस में मिल बैठ के मसले हल करती हैं, लेकिन वो मसले सियासी कुव्वतें हल कर सकती हैं जो उनके अपने हों, ये मसला सियासी कुव्वतों का नहीं है। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ये मुजाकरात वही डाक के तीन पात ये होते भी रहे, बार बार हूँ दोबारा नून लीग वाले कहते हैं कि ठीक है हम नया दौर शुरू करते हैं मुजाकरात का, तो उसका नतीजा भी यही निकलेगा जो अभी सामने आया है। तो इस हवाले से ये सियासी मसाइल नहीं है कि ये इक्तदार और मैंडेट की चोरी का मामला है। तो वो कहते हैं ना कि दो पार्टियां अगर आपस में लड़ती हैं तो थानेदार उनका मसला हल करता है, तो ये थानेदार की जाने के बजाय खुद आपस में ही तस्फिया करने बैठ जाए तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, इन्हें थानेदार के पास जाना होगा।
अच्छा, तसव्वुर साहब, जो सुनने में आया है कि पीटीआई का जो सबसे बड़ा मुतालबा था जुडिशियल कमीशन का इस हवाले से, जबकि अभी तक हुकूमत ने तो कोई अपने उस पे नहीं किया था, लेकिन कि हुकूमत शायद उस पे पार्लिमानी कमीशन बनाने पे तो यानी टेक जो देना चाह रही थी टॉफी वो पार्लिमानी कमीशन की थी, पीटीआई इस पे नहीं आना चाह रही थी और जुडिशियल कमीशन ही। तो जो मुबस्सरीन की राय है कि जुडिशियल कमीशन का मतलब तो ये है कि फिर पीटीआई हकूमती मौकफ यानी जो हकूमत को जैसे हकूमत मिली है जो पीटीआई का दावा है उस हवाले से जब तहकीक हो तो बहुत सारी चीजें हकूमत की कमजोरियां तशतबाम हो जाएंगी। तो क्या कुछ ऐसा ही नहीं है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है इस हवाले से वो यही है बिल्कुल। वो यही चाहते हैं कि जब जुडिशल कमीशन बनेगा ना तो उसमें बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। जैसे पिछले इलेक्शन में इमरान खान कहता होता था बस चार हल्के खोल दें आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, तो अब भी ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा उसी तरफ एक कदम था और ये बड़ा मौसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हथियार है कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो उसमें जाहिर है जजलिया अदलिया का कुछ जजेस का हमारे और अदलिया का कुछ ना कुछ वकार वारल है। तो इस हवाले से उनका जो दोनों पार्टियों का मौका सुनने के बाद जो उनका फैसला होना था वो भी काबिले कबूल होता दोनों के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि नून लीग ने ये फैसला कर लिया तो वो पीटीआई तस्लीम कर ले, या पीटीआई ने जो फैसला किया वो नून लीग तस्लीम कर ले। यहाँ पे गड़बड़ होने का एहतमाल था और पार्लिमानी जो ये कमीशन बनाते हैं वो जाहिर है सियासी लोग होंगे और पार्लियामेंट के मुंतखब
वही तो
नुमाइंदे
आप
होंगे, तो वो किसी
बता
ना
रहे
किसी
थे।
किसी ना किसी के साथ उनकी वाबस्तगी है और उसकी बुनियाद पर वो जानबदारी का मुजाहरा करते। तो इस बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि गैर जानबदार जजों पर मुश्तमिल एक जो अदलिया का कमीशन बना दिया जाए और उस का जो फैसला होगा वो सबको कबूल होगा। और जो अदलिया की जानब से कमीशन बनाया जाता है वो उसको उस अंदाज में देखते हैं, एक केस के तौर पे ले रहे होते हैं, जबकि जो पार्लिमानी कमीशन होता है वो उसको केस के तौर पे नहीं मसले के तौर पे ले रहे होते हैं। तो यूं ये वो बुनियादी डिफरेंस था जिसका पीटीआई वाले इदराक रखते हैं और उन्होंने कहा हम जो है वो पार्लियामानी कमीशन का मुतालबा करते हैं और इसी बुनियाद पे। और जाहिर है पीटीआई को की क्यादत को अब तक जो सजाएं हुई हैं वो भी अदलिया की जानिब से दिलवाई गई है ना, तो अदलिया की नजरों में वो क्लियर होकर अदलिया को ये बताना चाहते थे कि देख लें आपकी तरफ से जो हमें सजाएं दी गई हैं वो सारी सियासी बुनियादों पर थी और ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा था तहरीके इंसाफ से। तो इस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया और ये उनका मुतालबा जायज है कि उनका जो मौकफ है, या हम इंतखाबात के हवाले से बात करें फार्म 47 और फार्म 45 का जो झगड़ा है या मैंडेट का जो मामला है, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहरहाल नाइंसाफी हुई है और
जी
वो अगर हम गैर जानबदारी से देखें तो उसमें उनका मैंडेट चोरी हुआ है बहुत सारी सीटों पे। इवन लाहौर की अगर बात करूं तो लाहौर में बड़ी बड़ी सीटें जो है उन पर गड़बड़ेशन की गई है। तो ये वो चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने پارلیمانی کمیشن کا مطالبہ کیا ہے، عدلیہ کے کمیشن کا مطالبہ کیا ہے؟
تصور صاحب دیکھیں، ایک پی ٹی آئی کا سٹانس یہ تھا کہ ہم فارم 47 کی حکومت سے بات نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، انہی سے بات کریں گے جو فیصلہ ساز ہیں، لیکن بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. جو دلچسپ صورتحال بنتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس موقوف کرنے کا یا ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، فوراً ہی انہیں تحریک تحفظ آئین بھی یاد آ گئی، فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کرنے چلے گئے، اچکزئی صاحب سے بھی. تو کیا آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ پھر تحریک انصاف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس اور تحریک کی طرف جانے کا سوچ رہی ہے؟
اچھا، اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، کچھ غیر مصدقہ اطلاعات، یہ ان کو اب مصدقہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین ہیں انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ اس میں میری جو اطلاعات تھیں کہ ایک طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات چل رہے تھے. دونوں طرف سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے رابطوں میں تھی، اور ایک طرف تو واضح تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف واضح نہیں کیا گیا تھا، وہ خفیہ رکھے گئے تھے اور اس میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا. اور دوسری طرف جو مذاکرات ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس میں جو طے ہوگا وہ ہمارے درمیان ہوگا، لیکن اس کا اعلان حکومت سے کروائیں گے، اور یوں ایک پیغام جائے گا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے موقف میں سرخرو ہو گئی ہے. تو یوں ایک سائڈ سے وہ فیس سیونگ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ فیس سیونگ کے طور پہ حکومت کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی اور ادھر بھی چل رہی تھی، لیکن وہاں پر کوئی معاملات آگے بڑھ نہیں پائے، تو جس کی وجہ سے ادھر بھی بریک لگ گئی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے کلیئر طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو توقعات تھیں وہ ان کی پوری نہیں ہوئی. کچھ ایسے پوائنٹ تھے کہ جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو گرین سگنل نہیں ملا، اس پر پھر پی ٹی آئی نے یہ معاملات جو ہیں وہ روک دیے. اب یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں، یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں، یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، یہ صرف حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. بہرحال جے یو آئی فے جو ہے وہ بھی ایک قوت تو ہے، اور وہ ہمیشہ ان معاملات میں جو ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف رہا ہے وہ بڑا مدلل ٹھوس رہا ہے، کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا بعض قوتوں کو ماضی قریب میں. تو اب بھی پی ٹی آئی یہ توقع رکھتی ہے کہ جے یو آئی کے پاس وہ قوت ہے، اور ان کے پاس ظاہر ہے مدارس کے طلبہ کی شکل میں افرادی قوت بھی بہرحال بہت زیادہ ہے، تو یوں سٹریٹ پاور ہونے کی وجہ سے جے یو آئی کا ایک وزن ہے ہماری سیاست میں. تو یوں مولانا فضل الرحمان سے رابطے اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ رابطے، تو یہ اس طرف ایک اشارہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ سیدھے معاملات طے نہیں کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے اپنی رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر لاہور میں جلسے کی اجازت ملتی ہے تو یہاں پہ بھی ایک بڑا بریک تھرو کا امکان ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کوئی بڑا پیغام دے سکتی ہے قوم کو. تو یوں یہ جو 8 فروری آ رہا ہے تحریک انصاف کے لیے ایک بہترین پوائنٹ ہے کہ اس پر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں اور آئیں، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بابر ہو کہ عوام اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. تو اس پوائنٹ کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ مہم شروع کر دی ہے. کل جو لاہور میں ان کا اجلاس ہوا تھا، اس میں مختلف اضلاع کے جو ان کے تنظیمی عہدیدار تھے وہ اس میں شریک تھے، اور ان کو قیادت کی جانب سے یہی ہدایات دی گئی تھی کہ آپ نے اپنے اپنے اضلاع میں جا کے لوگوں کو فعال کرنا ہے اور لوگوں کو نکالنا ہے. تو اس جو پیغام دیا گیا ہے اپنی نچلی قیادت کو، وہ اس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کو کوئی اچھا دھماکہ کرنا چاہتی ہے کہ جس میں زیادہ لوگ اب باہر نکلیں اور حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے کہ عوام اب بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
بہت شکریہ تصور صاحب، دل تو تھا کہ آپ سے اور باتیں کی جاتی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارا پروگرام اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ، ہمارے فیس بک پیجز اور ہمارے دیگر سوشل میڈیا پیجز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. تصور صاحب، آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.